नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में मुठभेड़ में 5 सुरक्षाकर्मी शहीद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारतीय सैनिक क्षेत्र में आतंकवाद का सफाया करने के लिए प्रतिबद्ध। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पुलिस स्टेशनों में गवाहों से पूछताछ न करने के लिए कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मॉरिशस पहुंचे। संयुक्त राष्ट्र में नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा, भारत ने सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचा सफलतापूर्वक उपलब्ध कराया। और टेनिस में सुमित नांगल का पुरुष सिंगल्स के 32वें राउंड में इलियास यमेट से मुकाबला आज। दोपहर समाचार के साथ मैं चंद्रिका जोशी। जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी और विशेष अभियान दल के एक जवान सहित 5 सुरक्षाकर्मी वीरगति को प्राप्त हुए। कल रात डोडा जिले में सेना और आतंकवादियों के बीच शुरू हुई मुठभेड़ में ये जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना पर राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान दल ने कल रात धारी गोटे इलाके में संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान गोलीबारी में एक अधिकारी सहित 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्होंने आज दम तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वीर सैनिकों के बलिदान को नमन किया है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकरोधी अभियान में भारतीय सेना के बहादुर जवानों के वीरगति प्राप्त करने पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राष्ट्र उन सैनिकों के परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा है, जिन्होंने कर्तव्य के दौरान अपने जीवन का बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि आतंकरोधी अभियान जारी है और भारतीय सैनिक आतंकवाद को समाप्त करने तथा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी उन जवानों के प्रति संवेदना व्यक्त की है, जिन्होंने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में सेना शोक संतप्त परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे अपने संसदीय क्षेत्र में मुठभेड़ की घटनाओं से दुखी हैं। श्री जितेंद्र सिंह ने लोगों से एकजुट होकर दुश्मन के नापाक इरादों को नाकाम करने और घाटी में शांति और सद्भाव बनाए रखने का आग्रह किया। सरकार ने रक्षा क्षेत्र में आयात को कम करने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 346 वस्तुओं वाली 5वीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची PIL अधिसूचित की है। इसमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लाइन रिप्लेसमेंट इकाइयां, स्पेयर घटक और कच्चा माल शामिल है, जिनका आयात प्रतिस्थापन मूल्य 1000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये सामान केवल भारतीय उद्योग से खरीदा जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में 12,300 से अधिक वस्तुओं का स्वदेशीकरण किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि पुलिस स्टेशनों और पुलिस विभाग के नियंत्रण वाले स्थानों को गवाहों से पूछताछ के लिए निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत सभी पुलिस स्टेशनों को ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाहों से पूछताछ के लिए एक निर्दिष्ट स्थान की पहचान करने के लिए कहा गया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक गुलाब यादव के विभिन्न परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। सूत्रों के अनुसार आज सुबह 6 बजे से धनशोधन मामले में पटना, पुणे और मधुबनी में छापेमारी की जा रही है। निदेशालय के अधिकारी मधुबनी के झांझरपुर में गुलाब यादव के पैतृक निवास सहित विभिन्न जगहों पर तलाशी ले रहे हैं। गुलाब यादव ने 2015 में झांझरपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। इस साल लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर वे चुनाव हार गए थे। नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय अन्वेषण अभिकरण ने कल रात हजारीबाग के गेस्ट हाउस से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही हजारीबाग से अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार व्यक्ति के कब्जे से महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए। बिहार में विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की आज अज्ञात हत्यारों ने उनके दरभंगा स्थित पैतृक आवास पर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार जीतन सहनी आज सुबह अपने आवास पर मृत पाए गए। वे गांव में अपने घर पर अकेले रहते थे। एक रिपोर्ट।
बिहार पुलिस ने विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी हत्याकांड मामले में 4 सदस्यों की एसआईटी का गठन किया है। दरभंगा ग्रामीण की पुलिस अधीक्षक काम्या मिश्रा को जांच टीम का प्रमुख बनाया गया है। इधर प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों ने इस हत्याकांड की कड़ी निंदा की है और हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की भी मांग की है। वहीं विपक्षी दलों ने इस घटना को लेकर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाया है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की हत्या की निंदा की है।
मुकेश सहनी बिहार के एक राजनीतिक नेता हैं। अगर उनके पिता की हत्या हुई है, ये मैं दुख जताता हूं और इतना जरूर कहूंगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा और राज्य सरकार इसके प्रति गंभीर है।
भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस शासन के दौरान पिछले वर्ष में कर्नाटक में घोटालों के साथ साथ महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में भी वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में आज एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने आरोप लगाया कि मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आवंटन में अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए आरोप लगाया कि सिद्धरमैया भी कथित घोटाले में शामिल हैं। सुश्री करंदलाजे ने कहा कि कर्नाटक में अनुसूचित जाति और दलितों के विकास के लिए आवंटित धनराशि का भी दुरुपयोग किया गया। बिहार के पटना जिले में आज सुबह एक सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। बाढ़ अनुमंडल के पुलिस उपाधीक्षक अभिषेक सिंह ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि यह दुर्घटना पटना बख्तियारपुर 4 लेन राजमार्ग पर उस समय हुई जब एक तेज रफ्तार वाहन खड़े ट्रक से टकरा गया।
हाईवा गाड़ी खड़ा हुआ था और पीछे से तेज रफ्तार में जो स्कॉर्पियो आ रही थी, नवादा से आ रही थी, उसके द्वारा टक्कर मार दिया गया और तब उसके अनुसार कुल 4 व्यक्ति ऑन स्पॉट डेथ किए और बाकी लोगों को इलाज के लिए भेजा गया, जिससे एक व्यक्ति यहां बख्तियारपुर में अस्पताल में डेथ की और एक व्यक्ति पीएमसीएच में। तो टोटल अभी तक 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है इसमें और बाकी अन्य जो लोग हैं उनका इलाज चल रहा है और विधि व्यवस्था सामान्य है।
महाराष्ट्र में मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस के एक ट्रैक्टर से टकरा जाने से 5 लोगों की मौत हो गई और 42 अन्य घायल हो गए। यह हादसा नवी मुंबई के पनवेल के पास आधी रात के आसपास हुआ। बस में 54 श्रद्धालु सवार थे जो आषाढ़ी एकादशी समारोह के लिए पंढरपुर जा रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत का सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने संयुक्त राष्ट्र में उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच चर्चा में सतत विकास और समावेशी विकास की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता पर राष्ट्रीय वक्तव्य देते हुए ये बात कही। श्री बेरी ने कहा कि भारत अपने प्रयासों के सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान करता रहा है। है। उन्होंने कहा कि भारत बड़े पैमाने पर बुनियादी और डिजिटल ढांचे के सफल निर्माण, धोखाधड़ी कम करने के लिए डिजिटल डिलीवरी के साथ लक्षित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान देने में सफल रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर आज मॉरिशस पहुंचे। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि वे उपयोगी भागीदारी और भारत तथा मॉरिशस के बीच विशेष संबंधों को आगे बढ़ाने को लेकर उत्साहित हैं। यात्रा के दौरान श्री जयशंकर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविन्द जगनॉथ से भेंट करेंगे और अन्य वरिष्ठ मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे मॉरिशस के अन्य प्रमुख नेताओं से भी मिलेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा से दोनों पक्षों को द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं की व्यापक समीक्षा का अवसर मिलेगा। ये यात्रा भारत मॉरिशस संबंधों के महत्व, भारत की पड़ोस प्रथम नीति, विजन सागर और विकासशील तथा आर्थिक रूप से कमजोर देशों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। स्वीडिश ओपन टेनिस में आज भारत के सुमित नागल पुरुष सिंगल्स के 32वें राउंड में आज शाम स्वीडन के एलियास यमेर से मुकाबला खेलेंगे। पुरुष डबल्स में सुमित नागल और पोलैंड के करोल ड्रेज विकी की जोड़ी का मुकाबला फ्रांस के अलेक्जेंडर मुलर और लुका वॉनिश से होगा। सुमित पेरिस ओलंपिक खेलों से पहले बढ़िया प्रदर्शन करके आत्मविश्वास बढ़ाने के इरादे से उतरेंगे। सुमित नागल ने इस सत्र में दो चैलेंजर खिताब जीते हैं। घरेलू शेयर बाजार आज एक बार फिर सकारात्मक रुख के साथ खुले। सेंसेक्स और निफ्टी लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए। विदेशी फंड प्रवाह और अमरीकी बाजारों में तेजी से घरेलू बाजार में भी तेजी का रुख रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 230 अंक से अधिक की बढ़त के साथ नई रिकॉर्ड ऊंचाई 80,900 अंक के नजदीक पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 74 अंक की वृद्धि के साथ 24,661 के नए सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज देश के पश्चिमी तटीय भागों में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग का कहना है कि कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, तटीय और दक्षिणी कर्नाटक, सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक क्षेत्र में मानसून की सक्रियता बढ़ गई है। केरल में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
लगातार तेज बारिश के कारण केरल के उत्तरी हिस्सों में निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तेज वर्षा से पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन, फसलों को भारी नुकसान और मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। राज्य में बारिश की कई घटनाओं में आज 4 लोगों की जान चली गई। नदियों का जलस्तर बढ़ने से प्रमुख बांधों से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। विभिन्न इलाकों में यातायात और बिजली प्रभावित है। केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप में 19 जुलाई तक मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
उत्तर प्रदेश में 17 जिलों के 1,500 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर के शहरी इलाकों में भी बाढ़ की स्थिति है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित लोगों को 24 घंटे के अंदर सहायता देने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि संपत्ति के नुकसान सहित फसल हानि या बाढ़ क्षति से प्रभावित लोगों को तुरंत वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए। श्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को बाढ़ की स्थिति और नदियों तथा बांधों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने को कहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, सीतापुर, हरदोई, अयोध्या, बहराइच, गोरखपुर, बदायूं, देवरिया, उन्नाव, फर्रुखाबाद, बरेली और बाराबंकी जिले के कई गांव बाढ़ तथा बांध से छोड़े गए पानी से प्रभावित हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में मुठभेड़ में 5 सुरक्षाकर्मी शहीद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारतीय सैनिक क्षेत्र में आतंकवाद का सफाया करने के लिए प्रतिबद्ध। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पुलिस स्टेशनों में गवाह अफवाहों से पूछताछ न करने के लिए कहा। विदेश मंत्री एस जयशंकर दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर मॉरिशस पहुंचे। संयुक्त राष्ट्र में नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा, भारत ने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचा सफलतापूर्वक उपलब्ध कराया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।